نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغال ومغى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اسلام کے اندر ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اسلام اور ظلم دو متضاد چیزیں ہیں جیسے اندھیرا اور روشنی جہاں ظلم ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا اور جہاں اسلام ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا تو اسلام کی سوسائٹی جو ہے وہ ظلم سے پاک ہوتی ہے بلکہ اسلام کی ابتدا جو ہوئی اسی ٹاپک پہ ہوئی اسی عنوان سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پہلا کام یہی تھا کہ جو ظلم تھا وہاں پر بہت عام تھا بے انتہا ظلم تھا تو اس ظلم کو ختم کرنے کا سب سے پہلا قدم جو تھا اسلام کا تھا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ظالم ہو سکتا ہے یا ظلم کر سکتا ہے یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں اسلام نے ہمیں دیا یہ چیز ہے الحمدللہ کہ بندے کے اندر ظلم نہ ہو ظلم کس کو کہتے ہیں ناانصافی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا جان مال آبرو میں حقوق کو دبانا ناجائز اس سے کام لینا اس کی مجبوری کو استعمال کرنا کسی میں اتنی استطاعت نہ ہو لیکن اس سے زیادہ کام لینا کسی آدمی کو دبانا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا گالی نکالنا بدتمیزی کرنا بے ادبی کرنا یہ سارا ظلم ہے اور یہ معاملہ سوسائٹی میں ہر وقت چلتا ہے آپ یہ دیکھیں ہر وقت چلتا ہے سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی انسان جو ہے کسی پہ محکوم ہوتا ہے طاقت تو رکھتا ہے اس پر یہ تو ہے اس طاقت سے پھر وہ اپنا استعمال کرتا ہے اس انسان پر اس کو دباتا ہے ناجائز دباتا ہے غصہ بھی کرتا ہے اندر اس کی یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو جو چاہے کر سکتا ہوں میرا کیا کرے گا یہ مجھ سے تو چھوٹا ہے میں اس عہدے میں بڑا ہوں میرا اسٹیٹس بڑا ہے تو میرا ملازم ہے میں حاکم ہوں حکمیت جو ہے یہ انسان کو کسی نہ کسی درجے پہ ضرور ملی ہوتی ہے فرض کریں کوئی فیکٹری کا آنر ہے یا کوئی دکان چلا رہا ہے اس میں کام کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے یا کچھ بھی نہ ہو تو کسی بھی معاملے کے اندر اس کو حاکم مقرر کر دیا گیا ہے یا پرنسپل بنا دیا گیا ہے یا اس کے انچارج بنا دیا گیا ہے اس کے ماتحت کچھ کام کر رہے ہیں بے شک ایک آدمی کام کر رہے ہیں دو ہی آدمی کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی احتیاط کیجیے اسلام میں इसको हम इस्लामी नहीं समझते, बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। याद रखें कि हमारा उसके साथ रवैया क्या है, गैर इंसाफी के साथ है, तकलीफ पहुंच जाती है उससे, इस्तेदाद से ज्यादा या उसके असूल से ज्यादा उससे काम लिया जाता है, उसके हक को मारा जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब देखना हमारे माशरे में कौन सा घर हमारा ऐसा होगा जिसमें हमारे नौकरानी काम नहीं करती, आराम आम है इसमें खाल इंडिया पाकिस्तान में भी गरीब आदमी आप बेचारा क्या थी, हम आपके बर्तन धो देंगे, कपड़े धो देंगे, तो उनको रख लेते हैं। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, ये तो आपका मुशाहदा है, मेरे मुशाहदा है कि उनके साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, बड़े बड़े मजहबी घराने के अंदर बड़े बसुख से कहते हैं ये हमारे नौकर है, ये हमारी नौकरानी है, हमारी फलाह है, ये हमारा फलाह है, ना कोई उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ना कोई उनके साथ इज्जत की जाती है, ना उनके बेचारों के साथ मोहब्बत की जाती है, उनको इंसान समझा ही नहीं जाता। खाना भी वो देंगे जो हमारा बच गया ना, वो खाना उसको देंगे, क्या इस्लाम ने बताया, नबी पाक का तरीका था। और मजहब की बात सुने तो बस पूछिए ना, खाना कावा पे अजान दे रहा है आदमी, उसकी छत पे अजान दे रहा है, इतना इतना मोतबर है वो आदमी। उस नौकरानी से पूछें, उसके बच्चों से पूछें कि उनके भी तो दिल है बेचारों के, ईद होती है हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पैसे देते हैं, उन बच्चों को कुछ भी नहीं होता बेचारों को, कितना कंट्रास्ट है। इस्लाम है बिल्कुल नहीं, इस्लाम इस्लामी सोसाइटी नहीं है। फिर कहते हैं ये क्यों अजाब आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या मुसीबतें आ रही हैं, ये गुनाह नहीं है हमारे नज़दीक, ये हमारा हक है कि हम ऐसा करें, क्योंकि हम अमीर हैं वो गरीब हैं, मैं मालिक हूँ ये मेरा नौकर है, मैं काम करता हूँ, जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स का तस्वर भी नहीं है। और सबसे पहले तस्वर इस्लाम ने दिया ही, सबसे पहले ह्यूमन राइट का तस्वर कहाँ से मिलता है, इस्लाम से, इन्होंने फैच किया है, खींचा है सारे, एग्जॉस्ट किए सारी चीज, सब वहीं से आया इस्लाम से। इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ मजहब है, और मजहब जो दिया गया अल्लाह ने इंसानियत के भलाई के लिए दिया है कि जितना अरसा मैं इस दुनिया में तुम्हें रखूं तो अच्छे तरीके से रहूं। उसके लिए एक देखे ना, एक मैं कुछ शहर बनाता हूँ, एक मुल्क बनाता हूँ, तो मैं उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, एक प्रिंसिपल बनाऊंगा, कुछ चीज़ें बनाऊंगा कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए ताकि ये इसको ये तकलीफ ना हो, क्यों ये तकलीफ ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं मुल्क का, ठीक है ना, तो हम तो अपने एक मुल्क के हिसाब से देखते हैं हमारी राय को क्या सहूलत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो बाद में लोग तो अलहमदिल्ला जो अपने प्रिंसिपल बनाते हैं उस पर स्कूल में कायम रहते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ तो उस पर भी कायम नहीं रहता। उन किताबों में कुछ और असूल लिखे हुए होंगे और प्रिंसिपल्स होंगे, और उधर क्या होगा, मुख्तलिफ बात से अमल हो रहा हो, अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। चलो ये तो एक मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस पूरी कायनात का मालिक है, सिर्फ इंसानों से नहीं पूरी मखलूक से इसका ताल्लुक है, उसके जो असूल और प्रिंसिपल बने हैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि एक ही चींटी के तक के लिए बनाए गए हैं कि उसको भी तकलीफ ना पहुंचे। वो तो खालिक हर एक का, जो उसकी इस मखलूक को भी तकलीफ देगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, वो तो कहता है ये तो मेरी मखलूक है। जो भी मेरे मुमलक में रह रहा है, अल्लाह ताला कहता है जो चीज़ भी है, दरख्त भी है, हुक्म है कि दरख्त को भी ना काटो लड़ाई के दौरान, है हुक्म या नहीं, फलदार दरख्त को मत काटो, क्योंकि ये हमारा नहीं है इससे ताल्लुक, ये किसकी मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, उसकी है। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, जो उसके प्रिंसिपल होंगे, वो तो ओवर वर्ल्ड होंगे, पूरे हर इंसान के लिए होंगे, किसी खास लिमिटेड नहीं होंगे, भाई एक सोसाइटी के लिए, किसी चीज़ के लिए। जैसे हमारे एक मुल्क के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, फला मुल्क के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने मुल्क के हिसाब से उस पर अमल करते हैं। और उसके लिए क्या मेन मकसद क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, फलाह बहबूद आवाम की, आवाम को अच्छा देखना चाहते हैं, सड़कें बनाए, मकान बनाए, हम ऐसे ऐसे असूल बनाए, वहाँ को ज्यादती ना हो, बुरा ना हो, किसी को तंग ना करे, ये असूल बने होते हैं। लेकिन ये दुनिया के बने हुए हैं, तब कायनात का जो बना असूल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता, उसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता, वो कैसा होगा। तो उसमें जुल्म, उसके असूलों को छोड़ा जाए, उसके असूल को तंग निकाल दिया जाए और फिर कहा जाए इस्लाम है, इम्पॉसिबल। कितना बड़ी बात है आप ये देखें, लेकिन हम रह रहे हैं इसी तरह रह रहे हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला क्या कहता है, इंसान के हकूक के बारे में अल्लाह ने क्या पेश की है, ہمیں حکمات احکامات کیا ہے, ہمیں اللہ کے نبی نے کیا احکامات پیش کیے ہیں, کس طرح کوئی ہے؟ بالکل تو ہے, دنیا میں بالکل نبی پاک کے زمانے غلام تھے, باندیاں تھیں, نوکر تھے, لیکن کیا اصول تھا؟ جو وہ کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے, سبحان اللہ, جو وہ پہنتا ہے اس کو بھی پہنا دیتا ہے. تصور نہیں تھا, خیال نہیں تھا. بائی نیچر انسان کے اندر اتنی ہمدردی ہونی چاہیے. مجھے اپنی بات یاد آتی ہے, خیر میرا ایک ذاتی ملازم تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا, کپڑے استری کرتا تھا, میرے ساتھ جاتا تھا, پرسنل ملازم تھا بالکل میرا اپنا. تو خیر جو میں نے آپ کو اصول بتایا کہ ایسے لوگوں میں جہاں میں پیدا ہوا, ایسوکیٹ قسم کے لوگ تھے, ذمہ دار, بڑے اونچے لوگ, تو اسی ٹائپ لوگ تھے ہمارے فیملی میں, ایسے لوگ تھے سارے. تو وہاں یہ ہونا, میں آج سوچ رہا ہوں یہ بات جو کر رہا ہوں نا, تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کتنا اللہ کا کرم تھا. وہ آج تک اس کا نام یاد ہے, خادم حسین, عرصہ گزر گیا تھا کتنے, اس کا نام تھا وہاں, تو وہ میری خدمت کرتا تھا. اس کا اور میرا ریلیشن ایسا تھا جیسے بھائی. میں جب جاتا تھا گاؤں کے اندر, وہ میرے لیے کھانا بناتا تھا پرسنل, بالکل میرا ہر چیز, وہ ٹانگیں دبانی, یہ کرنا, وہ کرنا, جیسے کرتا ہے آدمی, اور ہر چیز کا وہ میرا ذمہ دار تھا. تو جیسے اور لوگوں میں دیکھتا تھا نا, انہوں نوکروں کیا حال کیا ہے, اور میرا اس سے جو تعلق تھا وہ بالکل بھائیوں والا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کو اتنی محبت ہو گئی میرے سے, اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں وہاں سے زندگی گیا, جا کے میں دوسرے شہر میں جا کے آباد ہوں, میں کراچی چلا گیا, تو کراچی بہت دور تھا ہمارے گاؤں سے, تو ہزاروں میل کا فاصلہ تھا, کہ تین دن لگتے تھے اب ڈیاز خان سے آپ وہاں جائیں, تو وہ تو پھر ڈیاز خان میں تھا, ایک گاؤں میں تھا جہاں ہماری زمینیں تھیں اس پر تھا. تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ جب آپ جب سے آپ گئے ہیں وہ تو رول ہو گئے, پاگل ہو گیا کہ میں نے اپنے اس کے پاس جانا ہے, کیا کہتے ہیں مالک کے پاس جانا ہے, میں نے سردار کہتے تھے ایسی کچھ, ان کے پاس جانا ہے. تو آخر پھر مجھے بلانا, میں نے اس کو بلایا, پھر اتنی دور ہے, آ گیا سب کچھ چھوڑ کے, رہا میرے پاس, کہتے مجھے اپنے پاس رکھے. تو لوگ یہ حیران ہوتے تھے کہ اس کا باقی آپ کا رشتے دار ہے, آپ کا نوکر ہے, بالکل کوئی فرق نہیں تھا. تو وہ تو ایک خیر اچانک ہی ہوا نا معاملہ, لیکن یہ انسان کی فطرت میں ایک انسان چیز پیدا کرے, یہ حقیقی فطرت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ فرق کیسا ہے. اب کام کرتے ہیں زمینوں پہ, لوگ کام کرتے ہیں, ہمارا تو بس گردن کھڑی ہو جائے گی, بیچارہ وہ تمہارا کام کر رہا ہے, زمیندار ہیں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم مالک ہیں, ہم جو کچھ کریں. یہ انسان اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح جو زندگی گزار رہا ہے اس کا حال بہت خراب ہے, یاد رکھیں, بہت بڑا خراب ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے, کسی پہ کنٹرول دیا ہوا ہے کسی معاملے میں. ایک میں چھوٹا سا مدرسہ بھی کھول لوں تو اس میں مجھے ٹیچر رکھنے پڑیں گے, میرے ان کے ساتھ کیا بیہیو ہے, ان کے ساتھ کیا لیے, یعنی کوئی بھی آپ دیکھ لیں. یہ ایک تو اللہ نے سسٹم ایسے بنایا ہے, ایک اوپر ایک آدمی نے رکھا ہوا ہے, اس لیے ایک انسان کے ایمان کو جج کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو انعام کتنا دیا جائے. تو یہ اب دیکھ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں, الذین ظلم ایا منقلوب, یہ قرآن کہتے ہیں کہ بہت جلد ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی بھیانک, خطرناک اور مصیبت جگہ جگہ پہ ان کو پھینکا جاتا ہے. قرآن کے لفظ ہے, یہ سزا ہے ظالم کی, ظالم کی جو ڈیفینیشن اس کی سزا ہے, بہت بری قیامت میں جگہ ہوگی ان کی, روزے قیامت میں اور جہنم کے اندر, کہ ان کو اتنی گہرائی میں ٹھوک دیا جائے گا, گرا دیا جائے گا. من کلوئیں جن کو لوگوں واپس جلدی آنا ہے. حدیث کیا کہتی اس والے میں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, عجیب حدیث ہے, تو سیکھیں, الظلم ظلمات یوم القیامہ, بہت بڑی حدیث, الظلم ظلمات کہ ظالم کے جو ظلم ہوں گے, جو اس نے ظلم کیے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, ایک کے ساتھ کی ہو, کسی کے ساتھ کی ہو, ماتحت کے ساتھ کی ہو, جس پہ اس نے قابو رکھا ہوتا, زیادتی کی ہو, تنگ کیا ہو, اذیت دی ہو, تو کیا ہوگا روز قیامت میں, وہ ظلم کیا بن جائیں گے اس کے لیے, ظلمات, عجیب سزا ہے, اندھیرے, ظلم نہیں ظلمات, اندھیرے بن جائیں گے. کیونکہ आखिरत में जो इंसान जन्नत तक रास्ता तय करेगा ना, वो उस अपने आमाल की रोशनी में जाएगा। भयानक 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 अंधेरा होगा उसे क़यामत में। तो क़यामत के अंदर हर आदमी जो है अपनी आमाल की रोशनी के अंदर सफ़र को तय करेगा जन्नत तक। सुभान अल्लाह। जिसके जैसे आमाल होंगे और वो आमाल जो रिजर्व होंगे, उसने उन अमालों को ज़ाया नहीं होगा। अमाल तो आदमी हर आदमी करता है, लेकिन अपने अमालों को ज़ाया भी तो कर देते हैं। जिसने अपने अमालों को रिजर्व किया हो, जैसे मैंने अभी नमाज पढ़ी, जिक्र किया है, अब इसको रिजर्व भी करना मेरा काम है, किसको महफूज कर लूँ ताकि रोज़े क़यामत में ये मेरा रोशनी दे मुझे, अब मैं गुजर सकूँ। ये नहीं कि भाई अमल किया ज़ाया किया, अमल किया ज़ाया किया, फेंक दिया उसको। नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, उनको ज़ाया किया। अल्लाह पाक ने वो बताया है कि अमल करने के बाद किन चीज़ों से आपने इसको कंट्रोल करना है और उसको रिजर्व रखना है रोज़े क़यामत तक। मैंने बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने कहता है, मैंने बहुत अच्छा मौका दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें एक इबादत का मौका दे दिया, एक नेकी का मौका दे दिया। ये अल्लाह का फजल ही ना कि रमज़ान असर का वक्त, मस्जिद का कोना और असर और रोज़ा खुलने वाला, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा वक्त अल्लाह ताला का, जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और हम जिक्र के लिए बैठे। इससे बड़ी क्या खूब हद उठा कर देखें हदीस इसकी शान में। जबकि यह है कि खुद अल्लाह ने शायद फरमाया कि रमज़ान की जो जीनत जो है वो क्या है, अल्लाह का जिक्र है। चार माल बताएं कि अल्लाह का जिक्र इसमें कसरत से करना है, तुम्हें जिक्र को नहीं छोड़ना है, जिस कदर चाहे अल्लाह का जिक्र करो। तो ये कौन दे रहा है हमें मौका, कौन दे रहा है? अल्लाह ने दिया, हमारे में क्या ताकत थी, हम क्या कर सकते थे? पेट में दर्द तो बैठ जाते, शैतान की मस्ती आती, नफ्स का जौक धोखा पड़ता है कि तो ख़त्म हो जाते। उसका फजल और करम रहमत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया की मसरूफियात से निकालते, किसी बहाने से भी हमें ले आए, नमाज के बहाने से ले आए, फिर हमें कही क्या हो रहा है, हम बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल करा दिया अल्लाह पाक ने, उस मजलिस में शामिल कर दिया। यहाँ आने तक तो काफ़ी हालात हो सकते हैं इंसान के, और होते भी हैं। तो जो इतना बड़ा अल्लाह अमल दे रहा है, अरबों करोड़ों का सवाब मिल रहा है, एक एक जो लफ्ज़ हम पढ़ेंगे वो जन्नत का ख़जाना है, और रमज़ान में हम लूट रहे हैं, ये काम हम बताएं, ये तो ऐसा लूट मार लगेगी ना थोड़ी देर में अभी। वो कलमे अल्लाह ताला के सारे इसमें ज़ात हैं, दुरूद पाक है, और फिर मराकबा, और फिर मराकबा भी अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ा कल्ब पर। ये कोई मामूली चीज़ है जिन पर फरिश्ते उतरते हों माशाल्लाह, और अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हों, बेहिसाब इंसान इतनी दौलत जमा करके और बाहर जाके उसको गटर में फेंक दे। अल्लाह ताला कहे ये भी ख्याल रखो कि इतनी मेहनत तुम करके आए हो, सब कुछ करके आए हो, तो अगला हिसाब रखो कि ज़ाया ना हो, और ज़ाया होने सारे रास्ते बता दिए अल्लाह पाक ने, किस तरह तुम्हारा नफ्स और तुम शैतान तो अमाल को ज़ाया करेगा। तो वो अमाल जो हमारे रिजल्ट भी होंगे, तो वो अमाल हमारी रोशनी बन जाएंगे, वहाँ हमें उन अंधेरा नजर नहीं आएगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस अमाल की रोशनी में फटाफट जन्नत की तरफ रास्ता तय हो रहा होगा, ऐसे आम हो जाएगा, आसान होगा बिल्कुल अल्लाह के फजल से। बल्कि मोमिन तो सोचेगा कि वो हदीसों हम सुनते थे, इतनी मुश्किलात थी क़यामत में, यार हमें तो कुछ नजर नहीं आ रही, ये गलत जगह तो नहीं आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इतनी आसाइश हो जाएगी इन अमलों की वजह से जो हम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं भी अपने आप को कहता हूँ, आपको क्या कहूँ, अपने को कहूँगा कि भाई जो अमल अल्लाह करा रहा है इसको इसको जब्त तो कर। झूठ से क्यों ज़ाया करता है, गीबत से क्यों ज़ाया करता है, हराम खोरी से क्यों याद करता है ज़ाया करता है, अल्लाह की नाफरमानी से क्यों ज़ाया करता है? इतना बड़ा अल्लाह इनाम देता है, उसके बाद जाके हराम खोरी कर देते हैं, गलत काम कर लेते हैं। तो इस पर तो बेइंतहा हर अमल पर इंसान बस कसम खा के निकले मस्जिद से कि यार ये नमाज मैं ज़ाया नहीं करूँगा, बेशक कुछ हो जाए। जैसे आदमी आके मेरे गिरबान पकड़ ले, गाली दे, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने चुपके से निकल जाना है, और रोज़े क़यामत तक मैंने इसको लॉक कर देना है, मैंने इस नमाज को अपनी ज़ाया नहीं करना। तो उस नमाज की शान देखना रोज़े क़यामत में क्या होगी इंसान की। लेकिन आजमाइशें आती हैं, चांसेस आएंगे कि वो आपके अमाल को ज़ाया करें, यही तो एक झगड़ा है इंसान की ज़िंदगी का। अमल भी हो जाए, अमल के बाद उसको कोशिशतन ज़ाया कराने की पूरी कोशिश करेगा, हमारे यही एक इम्तहान और टेस्ट है कि हम उसको कभी ज़ाया ना करें। इतने कुरान पढ़ते हैं, रमज़ान में इतनी मेहनत करते हैं, पहले दिन ईद के उसको ज़ाया कर देते हैं, झूठ बोल के फजूल हक के करते हैं। बस जब भी ऐसा कोई मौका आ रहा ना حرام خوری کا یا اللہ کی نافرمانی کا موقع آ رہا ہو نا تو سمجھنا کہ یہ میں جو آپ کام کروں گا نا شیطان کرا رہا ہے تو صرف یہ گناہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ میری پچھلی عبادت کو ساری ختم کرا رہا ہے, وہ بے روشن ہو رہی ہے, وہ بالکل بیکار جی روزے قیامت میں جس کا فائدہ نہیں ہو میں اندھیرے میں کھڑا ہوں. اور جنت کا راستہ جو ہے وہ تو پل سراط سے ہو کر جائے گا, پل سراط سے جائیں گے تو پھر جنت آئے گی آگے, اس سے پہلے تو ہیں پل سراط سے گزر کے پھر جنت آئے گی. تو پل سراط روشنی ہی ہے ضرورت, ورنہ تم اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو چاروں طرف اس کے جہنم ہوگی, چاروں طرف جہنم ہوگی, وہ تو بچ ہی نہیں سکتا جہنم سے, تو گڑ گڑ گرے گا. اب سنیں حدیث کا مفہوم سن لیں کیا ہے, ظلم ظلمات کتنے اچھے ہمارے ریزرو اعمال ہم لے آئے الحمدللہ, ہمارے پاس قرآن بھی آ گئے, ہمارے رمضان بھی آ گئے, ہمارے پاس حج بھی آ گئے, ہمارے پاس عمرے بھی آ گئے, نمازیں بھی آ گئے, ہمارے اعمال آ گئے الحمدللہ, چل رہا ہے روزے کی قیمت پہنچے. حدیث ظلم و ظلمات, ظالم جو انسان ہوگا اس نے جتنے ظلم کیے ہوں گے, جتنی بدماشیاں بدتمیزی کی ہوں گی لوگوں کے ساتھ, بہت چودھری بنا ہوگا, بہت حاکم بنا ہوگا, بہت ماسٹر بنا ہوگا, کیا ہوگا ظلمات, وہ ایسے اندھیرے بن کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جو قیامت کا اندھیرا ہوگا اس کو بھی نیچے کر دیں گے اللہ. اور اندھیروں کا کام یہ ہوگا کہ جو اس کے بہترین اور رزق اعمال ہوں گے جن کی روشنی میں اس نے جنت کے راستے کو طے کرنا ہے پل سراط سے, اب ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اس کے لیے کہ اس کے پاس وہ سارے اعمال جو ہیں اس کے ظلم کے اندھیرے میں ڈھانپ لیے جائیں گے. اللہ, ظلم کے اندھیرے میں چھپ جائیں گے, اب اس کے لیے سوائے ایک ہی راستہ ہوگا اور وہ جہنم کا راستہ ہوگا میرے بھائیو. اللہ اکبر, آج کی حکمیت کو, چودراہٹ کو, اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے دوسروں کو نیچا کر کے ان کو ظلم کرنے کو خدا کے واسطے یہ بہت تھوڑا وقت ہے, بہت تھوڑا وقت ہے. آج غلطی بھی ہو گئی تو اس نوکر سے بھی معافی مانگو, اس نوکرانی سے بھی معافی مانگو. یہ لفظ اچھا نہیں لگتا, ہماری ملازمہ ہے, ہماری نوکر ہیں, ہمارے خادمہ ہیں, نہیں نہیں ہمارا تو تمیز کا ماسی کہتے تھے, مطلب خالہ کہتے ہیں, تہذیب سے بلایا جائے کسی کو, نوکرانی کیا نہیں, خالہ کہیں ماسی کہیں جس طرح کہتے ہیں, اور ہزاروں ریسپیکٹڈ لفظ ہیں ان کے لیے آپ کہا جائے. غلطی ہو جائے تو آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو تو بچوں کو مار پٹتے دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, میں نے اس لیے بھیجا تھا اس نے ایسے یہ کام کیوں نہیں کیا, کیوں نوکر ہے, بارہ بارہ سال 13 سال بچوں کے پیچھے ظلم ہو رہا ہے, تڑی جائے گا تجھے نوکری سے نکال دیں گے, تجھے پیسے نہیں دیں گے, تو یہ کام نہیں کرتا. تو یہ کیا کم ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ ایک ظلم کے ساتھ ایک پتے کو بھی, درخت کے پتے کو توڑ دے بلا وجہ جاتے جاتے. دیکھو صوفیوں کے انداز دیکھیں, یہ سب چیزیں وہاں سے ملتی ہیں اللہ کو یاد کرنے سے, ذکر سے. حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ بڑے مجید خلفاء عبد المالک جن کے خلیفہ آپ نام سنتے رہتے ہیں, پیر غلام ابھی شاہ ان کے خلیفہ عبد المالک خلیفہ نا, تو وہ گئے ہوئے تھے, اجتماع تھا شاید مسکین بولا میں, بڑے بڑے مشائق کہتے ہیں, حضرت صاحب بھی تھے, ہمارے حضرت صاحب بھی تھے, اس زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے چلتے چلتے ان کا درخت لگا ہوا تھا, اس سے بیر توڑ لیا, جب ہم کہتے ہیں جی تبرک کے طور پر, یہ جوتے دے دیں شیخ کی, چادر کھینچ لیں گے امام کی تبرک کے طور پر. تو انہوں نے کیا, وہ جو چند بیڑ تھے جنہوں نے کہ بھائی میں اپنے شیخ کی جگہ پر آیا ہوں, درخت ہے, تبرک کے طور پر انہوں نے بیڑ توڑ لی ہے, چل پڑے حضرت کو تلا ہو گئی, ان کو بلا کے لاؤ اس کو, یہ ہے تربیت کسی خانقاہ کی, بلا لیا کہ تم نے تو شریعت کے اصول کو بھی توڑا ہے, تم نے تو بدعدبی بھی کی ہے, تم کیسے میرے مرید ہو. تو وہاں کے شیخ تو ایسے تھوڑی تھے کہ بھائی, وہ زمانہ اصل مریدوں اور شیخ کا تھا, یعنی اتنی سی غلطی ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی تھی. ہم نے دیکھا اپنے حضرت کے پاس, ان کا تو حالت غیر ہو گئی, مرنے والے ہو گئے, رنگ پیلا ہو گیا, کانپنے لگا, تھڑ تھڑ بالکل ختم. کہتے ہیں میرے سے کیا خاص, میں کیا کر دیا, رونا چیخنا بکان, برا حال کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا. کہتے ہیں تم نے اس بیری سے بیری کیوں توڑے, اجازت لی تم نے, بغیر اجازت شرعی اجازت دیتی کہ تم کسی چیز پہ حق ہو, حق ہے تمہارا مال توڑو. तुमने इस बेरी के साथ भी जुल्म किया और अपने साथ भी जुल्म किया, तुमने हुक्म तोड़ा है। और ये कोई मामूली बात है हमारी, ये नहीं है। मुझे बता क्या चार बेल ले ली, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया हमारे ये काम कर लिए, क्या ये मैं थप्पड़ मारते हैं, मेरा नौकर ही है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या, मैं राज कर रहा खुद लेटा है। जिस वक्त आप किसी से वो मार रहे हो तो आप सोचें मैं उसके, मुझे अपने हजरत के वाक जा रहा था, टांगे टांगे होते हैं ना हमारे शहर में, ये सूफी की बात बताऊँ, ये वहीं से मिलती हैं चीज़ें। तो ये टांगे में जा रहे थे, जैसे हमारे टांगे वाले करते हैं, चलता क्यों नहीं हो जो जबान उनकी अपनी, सब फिर सेंटा मारते हैं, फिर घोड़े को मारते रहते हैं बिलावज बेचारे को, डक्का देते चल जल्दी ये और वो, तो करते हैं तांगे में ऐसे तांगे वाले। तो हजरत बैठे थे उनके साथ, एक तो उम्रीद भी थे, उसको नहीं पता तांगे वाले को थे हजरत हैं हमारे, उसने जो घोड़े को घूसी साहब से मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हजरत क्या रुक जा, उसको कहा तो रुक गया, कहते तू घोड़े क्यों मार रहे, इसने क्या तेरा किया, कुछ ये तेरा चल तो रहा है, कहते तेज नहीं चल रहा जी, कि तेज नहीं चल रहा, जितनी रफ्तार उसको चल रहा है। मैं तो उससे एक सवाल करता हूँ, अब वो ये तो अल्लाह वालों का दास है ना कहने का, ये तो उनके दास जो ये बात कही होगी वो तो अल्लाह ही जानेंगे क्या बात होगी, कहेंगे अगर मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, अपनी जबान की बात हो रही है, हमारी सराय की जबान है, जैसे आपकी गुजराती है हमारी सराय, कहते हैं कि मैं तुझसे एक बात बताऊँ, मैं पूछूँ, कहता हाँ, कहता अल्लाह तुझे घोड़ा बना देता और घोड़े को इंसान बना देता और ये तुझे ऐसे मारता तो तू क्या करता। बस उसका तो जो हाल ही खराब हो गया बेचारे के आदमी का, उस पर ऐसी भी जिप्पी ठंडा हो गया, घोड़े को भी सुकून मिला, तो पहुंचा तो कहता ये कौन आदमी है, उसने कहा ये तो अल्लाह वाला आदमी है, कहता है कसम खा कहते कि इसकी इस बात ने तो मेरी पूरी जिंदगी को तब्दील कर दिया, ये जानवर था मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, अब मेरे जहन में ये है कि मैं इसको अच्छा खुराक दूँ, अच्छी चीज दूँ, ये कैसे मेरे दिल में एक ऐसी बात करके पूरे दिन को उतार दी शख्स ने। तो मेरे भाइयों जहन हमारे अंदर है, हम मोमिन हैं, जब इंसान इस्लाम लाता ना ईमान लाता है तो अंदर ये क्वालिटीज हैं, लेकिन इन क्वालिटीज को हम कहीं जाएं अल्लाह वाले के पास बैठें और इसी नीयत से जाएं कि ये नहीं हम शेख बनने जा रहे हैं या हम बहुत अल्लाह का वली बनने जा रहे हैं, वहाँ पे कश्फ शुरू हो जाएं, करामात शुरू हो जाएं, मुझे लोग खलीफा कहने लगे, वो तो ज़िंदगी में ना दुनिया में कामयाब ना आखिरत में कामयाब, बल्कि इस गम के साथ आदमी जाए किसी अल्लाह वाले के पास कि मेरी जो क्वालिटीज़ दब चुकी हैं, जो मेरी इंसानियतें दब चुकी हैं, जो नूर मेरे अंदर है ईमान का, मैं बहुत बड़ा आदमी मुझे अल्लाह ने बना दिया ईमान देने के बाद, कायनात के अजीम इंसानों में बना दिया, कि यो मकाम दे दिया कि इतनी बड़ी चीज़ मुझे दी है, इस सलाहियत में अगर मैं उतर जाऊं तो मेरा मुकाम तो ज़मीन नहीं बल्कि आसमान बन जाता है, मैं तो हवाओं में घूमने लगूं, ये कुछ भी नहीं है मेरे नज़दीक, फरिश्ते क्या होंगे मेरे नज़दीक, मैं तो उनसे भी बुलंद हो जाऊं, तो ये सब सलाहियतें बन के मैं तो एक मिट्टी का जर्रा बन चुका हूं, ये कुत्ते बिल्ली मुझसे अच्छी हो गई हैं, कुत्ता वफादार है मुझसे ज़्यादा, मैं अपने मालिक का वफादार नहीं, ये सब क्वालिटी मेरी कहां गई हैं। इंसान जब ये फिक्र होने के बाद, जब वो अल्लाह बताए हुए रास्ते पे कि मेरे किसी दोस्त के पास जाओ वो तुम्हें फिर इंसान बना देगा, तुम्हारी सारी चीज़ों को फिर उजागर कर देगा, तुम्हें फिर उस मुकाम पर ले आएगा कि तुम्हारे ईमान का नूर चमकने लगेगा। तो अल्लाह वालों के पास जाते हैं, जो लोग इस नीयत से गए आज उनके नाम रोशन है, चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके, आप जब भी तसव्वुफ की बातें होती हैं तो उन नामों के हवाले दिए जाते हैं, जैसे तशरीद गंगवी का नाम दिया जाता है, हज़रत थानवी का नाम लिया जाता है, मैं अपने हज़रत साहब का नाम ले रहा हूँ, हज़रत फजल कुरैशी का नाम लेता हूँ, सुभान अल्लाह। तो ये क़यामत तक है, आज भी जो मखलूक ये काम करती जाएगी, आप मैं कुत्ते बिल्ली नहीं है, हम खाने पीने के लिए नहीं आए, खाए पिए गधे की तरह मर जाएं, बस दिन सियात पूरी करें अपनी, तीन तीन रोटी खाएं, रात को बीवी के साथ सो जाएं, दो तीन बच्चे पैदा करके बस फिर शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर, फिर दुनिया से चले जाएं, नहीं, हमारा मुकाम तो बहुत ऊंचा है, जब तक इंसान ना मरे जब तक अपने असल मुकाम को ना देखे, असल मुकाम लगता था मैं मोमिन को जन्नत दुनिया में दिखा देता हूं मरने से पहले, क्या ये हदीसें हैं, तो कौन से मोमिन है जो अपनी जन्नत को देख लेते हैं, दिखाता है अल्लाह तआला मुकाम, तो हमें तो यहाँ कुक भी नजर नहीं आता, कुक्कड़ भी नजर नहीं आता, गधा भी नजर नहीं आता, चलता फिरता कि गधा भी नजर आ जाए, अब बनते बड़े फन्ने हैं, ख्यालात पूछ तो जन्नत फरदौस मांगते हैं, बस ये दो हाथ उठा दो जन्नत फरदौस, फला कर दो तो ये फला, ये रमजान में ये दुआ मांग लो तो ये हो जाए, तस्वीर से इस्तखार कर लो तो ये मांग, ये चीजें कहाँ चलती हैं भाई। गंद साफ करने के लिए, ईमान से मिट्टी को छांटने के लिए सुभान अल्लाह जिंदगी का मुजाहिदा करना पड़ता है, किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठ कर जिंदगी का मुजाहिदा करना पड़ता है। ये थोड़ी चंद घंटे के लिए आ गए, दो देर के बाद हम आ गए जी आपके पास जी, हमें मारे जी नजर जीवित देख सुन कुछ दो ना हजरत, हमें पहुंचाता जो आपके सीने में हमारे भी डाल रहे हैं, हम भी बना दें जैसे आप हैं, या हम फिक्रे हैं, कितना मजाक है सुबह के साथ, बस हजरत आ गए बस आपके पास आ गए थे। खास तौर पर जो है ना उलमा कराम ये काम करते हैं, माजस कर रहा हूँ, आए हजरत साहब हम आ गए आपके पास बजी, हम बड़े आपके साथ नजर मारे जी हमारे अंदर ही कोई चीज डाल दें जी, इस तरह थे इलम। एक जाहिर इलम सीखने के लिए 10 साल लग जाते हैं आदमी को, 8 साल 9 साल लग जाते हैं बुखारी खत्म करने के, जिसको खत्म करने की आपको 9 साल लगते हैं उस पर अमल करने के लिए कितने साल लगेंगे, जिंदगी चाहिए। इन्ना वल अमालु बिन्नियत, पहली हदीस पे अमल करने के लिए मैं कहता हूं पूरी जिंदगी चाहिए। तुम कहते हो कि ये नजर मार दो, जिस आदमी से तुम कह रहे हो नजर मार दो उसकी हैसियत पूछो कि उसने अपने आप को मिटाने के लिए क्या कुछ किया है, पकड़ो इतना, क्योंकि उनकी नजरें वक्त नहीं है, हैसियत नहीं है, तलब नहीं है, बनावट है, एहसास नहीं। जिक्र किया ये भी तो जिक्र है जी, वो भी तो जिक्र है जी, फला भी तो जिक्र होता है, एहसास नहीं है, तमाशबीन समझते हैं कि बस जहां तमाशा लग जाए थोड़ा सा लोग जमा हो जाएं बस वो सबसे बेहतरीन चीज, तमाशे चलते रहे बस, मजमे जमा होते रहे और कुछ नहीं, हम तकीर करते रहे मजमे सुनते रहे बस खत्म, सारी जिंदगी ना है कुछ, सारी जिंदगी तकीरें करने और लोगों को सुनाना। हालांकि रमजान का तसूल ये है कि सारा साल सुना है, रमजान सुनने का नहीं है अमल करने का है, पहले दिन मैंने आपको बताया ये महीना जो है अमल करने का, कोने बैठ के पूरा साल सुना है हमने, वक्त को जाया किया है, जितना हमारे पास ताकत है उस पर उसको प्रैक्टिकली अपने आप इंप्लीमेंट करो, उसको अमल करो ताकि कुछ कुछ हासिल करो। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं ये उसी सिलसिले में बात की है, अब इसका निचोड़ निकलेगा आप देख लें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि रोजा क्या क्या पैगाम देता है और क्या किस तरह रिफ्रेश कर रहा है हमारे दिन को। ये टॉपिक आया नहीं है जुल्म का, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी टॉपिक अल्लाह ताला दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कौन सा रोजा हो गया 17वीं मजलिस है हमारी, तो हर लिहाज से अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हैं कि इसको ऐसे ना समझो रमजान को खा पी शुरू नहीं, हर एक चीज दीन की रिफ्रेश कर रहा है, ताजा कर रहा है कि तुम ये भूले हुए हो इसको ताजा कर लो ना तुम तबाह हो जाओ। तो जरूर इतनी बड़ी चीज है, जब इतना बड़ी चीज है, अल्लाह ने कह दिया कि तुम करीब आओगे तो मैं जहन्नुम में डालूंगा, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि तू रोजे क़यामत से नहीं निकल सकेगा, तेरा ज़ुल्म तुझे आगे जाने नहीं देगा, तो क्या मैं एक ज़ालिम, अब इतनी बड़ी मामलात के बाद, इतनी बड़े गुनाह के बाद जरा हम अपना तज़िया करें कि हम ज़ालिम हैं या नहीं है, खुद इंसाफ कर लें, इस पर खुद इंसाफ कर लें, कितना बड़ा गुनाह है। रोजा हम ये पैगाम देने आए, रोजा बेचारा हम ये बता रहा है, कैसे बताया उसने, मन खफफा अन मलीकी, कितनी छोटी सी हदीस है कि भाई तुम्हारा रोजा नहीं होगा जब तक कि तुम्हारे रहम के अंदर तुम्हारे अंदर कैफियत नहीं आएगी, मुझे रख तो लिया तुमने लेकिन ये एक शर्त फिर लगा दी, पूरी हदीस चल रही है वो जो पहले स्टार्ट हुई थी उसमें आ रही है सारी चीजें, मन खफफा अन मलीकी, फिर क्या होगा, अल्लाह होगा, कितना बड़ा इनाम अल्लाह कहता है, गफरल्लाहु लहू, अल्लाह ताला कहता है जिसने ऐसा कर लिया कि अपने मुलाजिम को या जिस पे भी वो मुहकिम है, जिस पे वो मुहकिम है, जहां वो इंचार्ज है, हर आदमी हर जगह को इंचार्ज तो है ना, उसको उसने जरा नरमी बरत रही रोजे के अंदर, जुल्म से हाथ उठा लिया, तो ये इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा काम तूने किया है, इतना बड़ा अमल तूने किया है, ये इस्लाम की हकीकत वाला अमल तूने किया है, तो इस पे इनाम अल्लाह क्या दे रहा है, गफरल्लाहु लहु, अल्लाह ताला सारे गुनाह तेरे माफ फरमा देता है। वाद कहो मिनल नार, और तुझे जहन्नुम से भी आजादी दे दी, चल इस बात तो रोजा हमें पैगाम दे रहा है कि जब तेरी इस हैसियत से अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तेरा रोजा बेकार है। तो ये बता कि अगर तूने जिंदगी में इस काम का खतरा ना किया तो तेरी जिंदगी में अमाल बेकार है। ये पैगाम है रोजे का। संभल जा, एक रोजे को तो तू बचा लेगा। चलो हो रोजे में यार ये हुक्म आ गया है कि भाई इस अपने माल जो हमारे नीचे काम करने वाले उन पर जुल्म ना करो, उनसे ज़्यादा काम ना लो, उसकी हैसियत से ज़्यादा काम ना लो, उसकी रियायत करो, उनको पैसे दो। तो ये रमज़ान तक है रोज़ा कर। रमज़ान तक नहीं, मैं तो रिफ्रेश करने आया हूँ, मैं तो तेरे दिन को ताज़ा कर रहा हूँ कि तेरे अंदर ये पड़ी है बीमारी, तेरे अंदर ये ऐब मौजूद है। तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि जब अल्लाह तेरे इस ऐब से रोज़ा कबूल नहीं कर रहा तो तू बता तेरी इस ऐब से तेरी सारी ज़िंदगी की इबादत कैसे कबूल होगी। तो जैसे तूने आज अल्लाह के हुक्म को मान के जुर्म को छोड़ दिया और जो तेरे अंडर है उसे तो अच्छे काम लेने लगा, तो अल्लाह ने तुझे माफ भी कर दिया, दोज़ख से आजाद भी कर दिया। तो अगर तू पूरी जिंदगी ऐसे गुजार के अल्लाह के पास आएगा तो तेरा वो काम क्या होगा। दैट इज द रमजान एंड दैट इज द रोजा। ये रमजान और रोजा है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक दे। ये सब नई चीजें सारी जिंदगी के लिए इसको इस तरीके से रोजा गुजार। रोजा ही नहीं, पता है रमजान कहता है मुझे ही ऐसे ना गुजारो, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारो। मैं तो तुम्हें नमूने देने आया हूँ, तुम्हें जिंदा करने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर ये जो सलाहियत है तुम मुर्दा किए बैठे हो, तुम्हारी असलियतें तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जो जो रमजान में गुनाह से जिससे तुम्हारा रोजा बर्बाद होता है तो इससे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो सिर्फ रोजे ही को सही नहीं करना बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को सही करना है। वाखुदाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।